नमस्ते, मैं आराव हूँ। नाइन ना ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। एंडी क्लार्क की पुस्तक नेचुरल बॉर्न साइबॉर्ग्स, मन, प्रौद्योगिकियां और मानव बुद्धि का भविष्य, मन के दर्शन, संज्ञानात्मक विज्ञान और प्रौद्योगिकी अध्ययन के संगम पर लिखी गई प्रभावशाली गैर कथाकृति है। यह साइबोर्ग को केवल शरीर में लगी मशीन या विज्ञान कथा के पात्र के रूप में नहीं देखती। क्लार्क का तर्क है कि मनुष्य आरंभ से ही ऐसे जीव रहे हैं जो औजारों, प्रतीकों, लेखन, सामाजिक प्रथाओं और तकनीकी सहारों को अपने सोचने और कार्य करने का हिस्सा बना लेते हैं। इसलिए मोबाइल फोन, इंटरनेट खोज, पहनने योग्य कंप्यूटर या उन्नत कृत्रिम अंग कोई पूर्णतः अस्वाभाविक मोड़ नहीं, बल्कि एक पुरानी मानवीय प्रवृत्ति के नए रूप है। पुस्तक का उद्देश्य तकनीक के प्रति भय या अंधोत्साह दोनों से आगे बढ़कर यह जांचना है कि मन, शरीर और बाहरी दुनिया की सीमाएं वास्तव में कहां तक जाती है। क्लार्क मस्तिष्क की अनुकूलनशीलता को केंद्र में रखकर बताते हैं कि उपयोगी तकनीक धीरे धीरे इतनी सहज हो सकती है कि वह अलग उपकरण नहीं, हमारी संज्ञानात्मक व्यवस्था का कार्यशील अंग लगने लगे। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, मनुष्य को प्राकृतिक साइबोर्ग मानने का मूल तर्क। क्लार्क के लिए प्राकृतिक साइबोर्ग होने का अर्थ यह नहीं है कि हर व्यक्ति के शरीर में इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यारोपण लगा है। उनका अधिक बुनियादी दावा यह है कि मानव जीव विज्ञान और मानव संस्कृति शुरू से परस्पर जुड़े रहे हैं। मनुष्य अपनी सीमित जैविक क्षमताओं के बाहर स्मृति, गणना, दिशा, ज्ञान, संचार और योजना के लिए सहारे बनाता है, फिर उन्हें नियमित व्यवहार में शामिल कर लेता है। कागज पर सूची बनाना, नक्शे से रास्ता तय करना या घड़ी के आधार पर बिंब व्यवस्थित करना ऐसे साधारण उदाहरण हैं जिनमें बाहरी वस्तु विचार की प्रक्रिया को बदल देती है। इस दृष्टि में महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं कि उपकरण शरीर के भीतर है या बाहर, प्रश्न यह है कि क्या वह विश्वसनीय रूप से व्यक्ति की गतिविधि, निर्णय और सूचना प्रसंस्करण में जुड़ गया है। क्लार्क मानव विशिष्टता को किसी अलग शुद्ध आंतरिक बुद्धि में नहीं रखते। वे इसे शरीर, मस्तिष्क, पर्यावरण और सांस्कृतिक साधनों के लचीले संयोजन बनाने की क्षमता में देखते हैं। इसीलिए पुस्तक तकनीकी भविष्यवाणी से पहले मानवीय वर्तमान का पुनर्वर्णन करती है। आधुनिक डिजिटल उपकरण उस क्षमता को तेज और व्यापक बनाते हैं, पर उसके मूल सिद्धांत को पैदा नहीं करते। दूसरा, विस्तारित मन और त्वचा खोपड़ी की सीमा पर पुनर्विचार। पुस्तक का केंद्रीय दार्शनिक योगदान विस्तारित मन की धारणा को सुलभ रूप में विकसित करना है। सामान्य समझ के अनुसार सोच केवल मस्तिष्क के भीतर होती है और शरीर तथा वस्तुएं केवल उसके आदेश मानती है। क्लार्क इस विभाजन को चुनौती देते हैं। जब कोई व्यक्ति बार बार बाहरी नोटबुक, डिजिटल कैलेंडर या खोज प्रणाली का उपयोग करता है और वह साधन उसके लिए आसानी से उपलब्ध तथा भरोसेमंद है, तो वह केवल सूचना भंडार नहीं रह जाता, वह स्मरण, निर्णय और समस्या समाधान की व्यापक व्यवस्था में सक्रिय भूमिका निभाता है। इसका मतलब यह नहीं कि हर बाहरी वस्तु तत्काल मन का हिस्सा बन जाती है। क्षणिक, अविश्वसनीय या कठिन पहुंच वाला संसाधन उतना गहरा संज्ञानात्मक एकीकरण नहीं बनाता। तर्क की शक्ति इस अंतर में है कि यह मानसिक प्रक्रिया को अकेले मस्तिष्क की घटना मानने के बजाय व्यक्ति और परिवेश के निरंतर सहयोग के रूप में देखता है। इस विचार से व्यक्तिगत पहचान, जिम्मेदारी और क्षमता के बारे में कठिन प्रश्न पैदा होते हैं। यदि हमारी याददाश्त और निर्णय बाहरी प्रणालियों पर टिकते हैं, तो उनकी उपलब्धता, नियंत्रण और विश्वसनीयता हमारे वास्तविक बौद्धिक जीवन को सीधे प्रभावित करती है। तीसरा, पारदर्शी तकनीक, देह छवि और कौशल का एकीकरण। क्लार्क विशेष रूप से उस अवस्था में रुचि लेते हैं जब तकनीक उपयोगकर्ता के ध्यान का मुख्य विषय नहीं रहती, बल्कि काम करने का सहज माध्यम बन जाती है। इसे पारदर्शी तकनीक कहा जा सकता है। कुशल लेखक लिखते समय कलम की भौतिकता पर लगातार विचार नहीं करता और अनुभवी चालक हर क्षण वाहन के प्रत्येक नियंत्रण की अलग गणना नहीं करता। उपकरण और कौशल का समन्वय इतना अभ्यासपूर्ण हो जाता है कि क्रिया सीधे व्यक्ति की मंशा से संचालित लगती है। यह पारदर्शिता केवल सुविधा नहीं है, यह दिखाती है कि शरीर की अनुभूति और कार्य करने की क्षमता अनुभव के साथ बाहर तक फैल सकती है। कृत्रिम अंग, संवेदी सहारे और अन्य अनुकूल उपकरण इस बात को अधिक स्पष्ट बनाते हैं कि मस्तिष्क नए कार्यात्मक संबंध सीख सकता है। क्लार्क के लिए तकनीक का मूल्य केवल अधिक जानकारी देना नहीं, बल्कि क्रिया और अनुभूति के नए चक्र बनाना भी है। फिर भी पारदर्शिता में जोखिम है। जो साधन अदृश्य रूप से आदत बन जाता है, उसकी त्रुटियां, पक्षपात या निर्भरता भी आसानी से अनदेखी हो सकती हैं। इसलिए एकीकृत तकनीक को प्राकृतिक मानना उसकी सामाजिक और नैतिक जांच से मुक्त कर देना नहीं है। चौथा, साधारण लेखन से नेटवर्क युक्त उपकरणों तक संज्ञानात्मक सहारे। पुस्तक की एक उपयोगी विशेषता यह है कि वह उन्नत प्रत्यारोपणों को कलम, कागज, स्केचपैड और घड़ी जैसे पुराने संज्ञानात्मक उपकरणों की निरंतरता में रखती है। इससे तकनीक पर चर्चा केवल भविष्यवादी छवियों तक सीमित नहीं रहती। लिखित सूची स्मृति का बोझ घटाती है, अनेक जटिल संबंधों को देखने योग्य बनाता है और गणना उपकरण समस्या को छोटे बाहरी चरणों में बांट देता है। इन मामलों में व्यक्ति केवल अधिक तेज नहीं होता बल्कि समस्या को हल करने का तरीका ही बदल देता है। डिजिटल नेटवर्क इस प्रक्रिया को गति, पहुंच और पारस्परिकता देते हैं। खोज और संचार प्रणालियां जानकारी तक पहुंच को तत्काल बना सकती है, जबकि बुद्धिमान परिवेश व्यक्ति की स्थिति के अनुसार संकेत या सहायता दे सकता है। क्लार्क का निष्कर्ष यह नहीं कि मशीनें स्वतः मनुष्य से श्रेष्ठ हो जाएंगी। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि मानवीय दक्षता अक्सर सही ढंग से बने मानव मशीन संयोजन में उभरती है। इसलिए तकनीकी क्षमता का मूल्यांकन केवल उपकरण की शक्ति से नहीं होना चाहिए। यह भी देखना चाहिए कि उसका अंतरफलक, उपयोग की आदतें और सामाजिक व्यवस्था व्यक्ति को बेहतर निर्णय, ध्यान और सहयोग के लिए सक्षम बनाती है या नहीं। अंत में मानव मशीन सहजीवन की संभावनाएं और जवाबदेही के प्रश्न नेचुरल बॉर्न साइबॉर्ग्स तकनीकी निकटता को ना तो अनिवार्य विनाश मानती है ना स्वतः मुक्ति। क्लार्क पहनने योग्य कंप्यूटिंग, संवर्धित इंद्रियों, विचार नियंत्रित कृत्रिम अंगों और परस्पर जुड़े उपकरणों जैसी दिशाओं को इस प्रश्न के माध्यम से देखते हैं कि वे मानव क्षमता के साथ कैसे जुड़ेंगे। पुस्तक का आशावादी पक्ष यह है कि मानव मस्तिष्क असाधारण रूप से लचीला है और नए सहारों को सीख सकता है, लेकिन यह आशावाद किसी सरल तकनीकी नियतिवाद में नहीं बदलना चाहिए। किसी प्रणाली से लाभ इस बात पर निर्भर करता है कि उपयोगकर्ता को उस पर कितना नियंत्रण है, वह कितनी विश्वसनीय है और उसके प्रयोग का सामाजिक संदर्भ क्या है। यदि स्मृति, ध्यान या निर्णय बाहरी सेवाओं और उपकरणों से जुड़े हैं, तो पहुंच की असमानता, गोपनीयता और डिजाइन के पक्षपात भी संज्ञानात्मक न्याय के प्रश्न बनते हैं। इसी प्रकार अत्यधिक सूचना सहायता स्वतंत्र निर्णय को मजबूत भी कर सकती है और कमजोर भी। पुस्तक सीधे आज की सभी डिजिटल नीतियों का उत्तर नहीं देती, क्योंकि यह व्यापक डिजिटल मंचों के वर्तमान रूप से पहले लिखी गई थी। फिर भी इसका ढांचा स्पष्ट करता है कि तकनीक पर बहस में शरीर और मशीन के मेल के साथ स्वायत्तता, जवाबदेही और सार्वजनिक पहुंच को भी शामिल करना आवश्यक है। निष्कर्ष में यह पुस्तक दर्शन, संज्ञानात्मक विज्ञान, तंत्रिका विज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और प्रौद्योगिकी संस्कृति में रुचि रखने वाले पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। इसे उन लोगों को भी पढ़ना चाहिए जो यह समझना चाहते हैं कि फोन, खोज प्रणालियां, डिजिटल स्मृति और सहायक उपकरण हमारे व्यवहार को केवल प्रभावित नहीं बल्कि कई स्थितियों में संगठित कैसे करते हैं। क्लार्क का प्रमुख बौद्धिक लाभ यह है कि वे तकनीक के प्रश्न को मशीनों की क्षमताओं की प्रतियोगिता से हटाकर मानव मशीन व्यवस्था की गुणवत्ता पर ले आते हैं। इससे पाठक पूछ सकता है कि किसी उपकरण को कब सौंपना है, कब उसकी सलाह पर संदेह करना है और कब स्क्रीन से दूर रहकर ध्यान को बचाना है। समान विषय की कई पुस्तकें भविष्य के रोबोटों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या शरीर में प्रत्यारोपण के रोमांच और भय पर केंद्रित रहती है। नेचुरल बॉर्न साइबोर्ग्स की अलग पहचान यह है कि वह साधारण सांस्कृतिक औजारों और दैनिक आदतों से शुरुआत करती है। वह दिखाती है कि मानव तकनीकी संलयन कोई अचानक आने वाली घटना नहीं बल्कि मनुष्य होने के ढंग का पुराना और निरंतर विकसित होता पहलू है। कुछ पाठकों को इसकी दार्शनिक भाषा सघन लग सकती है, विशेषकर यदि वे विस्तारित संज्ञान से परिचित हों। फिर भी इसकी स्पष्ट केंद्रीय चुनौती आज भी महत्वपूर्ण है। मन की सीमा को त्वचा और खोपड़ी पर रोप देना शायद हमारी वास्तविक क्षमताओं और निर्भरताओं दोनों का अधूरा वर्णन है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं एंडी क्लार्क, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।